नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के 4 अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी मशीनें स्थापित की गई हैं। इन मशीनों की खरीद ई टेंडरिंग के माध्यम से की गई है और अस्पताल स्टाफ को इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल, केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार और सुरेंद्र शौरी के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 20 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोबोटिक सर्जरी को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए प्रयासरत है और गरीब वर्ग के मरीजों को राहत देने के लिए सर्जरी पर करीब 70,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि स्पेशल वार्ड लेने वालों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी और MRI सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर और आयुष्मान योजना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा का लाभ देने पर सरकार विचार करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रोबोटिक सर्जरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऑपरेशन पर करीब 1,00,000 रुपए खर्च आने से ये सुविधा सीमित वर्ग तक ही रह सकती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमाओं में एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यथास्थिति बहाल करने का ऐलान किया है। विधानसभा में आज एक विशेष वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एंट्री टैक्स में किसी प्रकार की बड़ी वृद्धि नहीं की है, बल्कि केवल विभिन्न श्रेणियों को रैशनलाइज किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रदेश में टोल टैक्स की दरों में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ श्रेणियों में मामूली संशोधन किया गया है, जो सीमित संख्या में आने वाली भारी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन वाहनों पर लागू होता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि शून्यकाल के दौरान विधायकों की तरफ से उठाए गए मामलों की निगरानी के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य वे स्वयं होंगे। विधानसभा में आज शून्यकाल में विधायक रणधीर शर्मा द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार शून्यकाल को गंभीरता से नहीं ले रही है और अभी तक उनके द्वारा उठाए गए 10 विषयों पर सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। चेस्टर हिल प्रोजेक्ट्स मामले में अधिकारियों में छिड़ी आपसी जंग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं और उन्होंने अपनी सफाई में कुछ अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर चुप्पी साधी है, जबकि सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने सदन में भी 2 बार धारा 118 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।
वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं, कौन कार्यवाही करेगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है। लेकिन जांच की दिशा में पहले मुख्यमंत्री अपना मुंह तो खोले कि भाई इस सारे विषय को लेकर के जांच करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के आपस में, जिसके कारण सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। सरकार अपना ना तो जवाब दे पा रही है, ना कोई कार्यवाही करने की स्थिति में हो पा रही है। ऐसी स्थिति से सरकार को बाहर निकलने के लिए कदम उठाना चाहिए और वो कार्यवाही क्या बनती है, मुख्यमंत्री पहले तो स्पष्ट करे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। उनके संरक्षण के बाद राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव है क्या ये?
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। ये चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा।
प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।